पर्युषण पर्व तृतीय दिवस बस आज है जिंदगी। 26 अगस्त को जैन महावीर भवन आदर्श नगर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी मा सा तारांकन ने फरमाया कि न राज है जिंदगी, न नाराज है जिंदगी, जो कुछ है बस आज है जिंदगी। भविष्य में नहीं, भूत में नहीं, बस आज में जिए। जो आज में जीता है वह सुखी रहता है और भव भव भी सुधार लेता है। कमा कमा कर संपत्ति आदमी इसलिए जोड़ता है कि भविष्य में काम आएगी, जबकि एक क्षण जीवन का पता नहीं। जो है उसका सदुपयोग करना सीख जाइए। एक संतान जितने हिस्से की संपत्ति को दान देना चाहिए। जिसके दो पुत्र हैं वो दो बंगले, दो गाड़ी, दो व्यापार देखता है, और अगर इसकी जगह तीन संतान होती तो क्या करते, एक बंगला और बनाते। अतः यह समझो कि एक संतान और है, वह है जन कल्याण। कमाई का एक हिस्सा जनहित में लगा दीजिए, उससे आपके एवं आपके परिवार के नसीब भी चलेंगे और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जयपुर में संतोख व दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, जिसका नाम करोड़ों आदमी जानते हैं। दुर्लभ जी ने अपने बेटे खेल शंकर भाई को पन्ने की खान दी थी, पर उसके नाम से कोई नहीं जानता। जो भी जानते हैं वो हॉस्पिटल बनाने में जो पैसे दिए उसके नाम से जानते हैं। यहाँ भी कोई पौष गाड़ी लेकर आ जाए तो कोई सम्मान करने वाले नहीं है। लेकिन इसकी जगह कोई आदमी 11 लाख का भी दान दे दे तो मैनेजमेंट उसका सम्मान करेगा। सम्मान भोग का नहीं दान का है। आप सत्ता संपत्ति और समय का जन कल्याण में उपयोग करना सीख जाइए। एक संतान जितना हिस्सा दान देने का सैकड़ों भाई बहनों ने संकल्प लिया। देव की महारानी को दो दो संतों के तीन सिंह घड़े एक ही दिखाई दिए। वैसे ही उनको यह क्यों नहीं समझ आया कि छहों संतों का चेहरा तो सातवें भाई श्री कृष्ण जी से मिलता है। क्योंकि जब यह घोषणा है कि एक रूप सम अवस्था वाले 8 बच्चे होंगे तो 7 तो हो गए। देवकी को श्री कृष्ण के समान 6 संत क्यों नहीं नजर आए? यह समझने वाली बात है। उसका कारण यह हो सकता है कि दीक्षा लेने के बाद चेहरे बहुत कुछ बदल जाते हैं। श्री कृष्ण की शोभा सजावट अलग रही है और 6 अनगार की अलग। दूसरी बात, श्री कृष्ण के नहाना धोना सब चलता है, जबकि 6 अनगारों के यह भी नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण के चेहरों से मिलान नहीं हो पाया, परंतु 6 अनगार के चेहरे परस्पर मिलते रहे हैं। क्योंकि 6 बैले बैले की तपस्या करने वाले होने से शरीर की कांति में फर्क नहीं आया। जिस प्रकार शालीभद्र मुनि को उनकी माता भी नहीं पहचान पाई थी, अतः श्री कृष्ण के चेहरे का भाइयों से देव की मिलान नहीं कर पाई, इसलिए श्री कृष्ण से भी अपना पुत्र नहीं समझ पाए हो। दूसरी बात, देव की जब आर्त ध्यान कर रही थी तो उसे यह समझ नहीं आया कि जब अतिमुक्त कुमार ने एक समान 8 पुत्र की मां बशने की बात कह रखी है तो अभी तक 7 ही हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि एक तो और होगा ही, किंतु जब आर्त ध्यान होता है तो बुद्धि कुंठित हो जाती है, कुंठा में सही बात भी पकड़ में नहीं आती। 6 पुत्रों का लालन पालन स्वयं द्वारा न करने से देवकी को संताप होने लगा था। देवकी महारानी ने भगवान का दर्शन करने के बाद 6 मुनिवरों के दर्शन करने पर भी अपने पुत्रों पर मोहभाव नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि बिना जानकारी के शरीर में परिवर्तन नहीं आया। जो भी परिवर्तन आया वो यह जानने के बाद कि ये पुत्र सुलसा के नहीं मेरे हैं, उसके बाद देखा तो शारीरिक परिवर्तन घटने लगा। अतः जिनवाणी के आधार पर स्वयं के स्वरूप को जानने की आवश्यकता है। समता ही धर्म है, यह सम्यक ज्ञान के बल पर जीवन में उतारने पर शांति आ जाती है। एक मुनि में एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदारी और लगन से अपना काम करता था। उसके काम से सेठ बहुत प्रसन्न था और सेठ द्वारा मिलने वाली तनख्वाह से उस आदमी का गुजारा आराम से हो जाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन वह मुनिम बिना बताए काम पर नहीं गया। उसके न आने से सेठ का काम रुक गया। तब सेठ ने सोचा कि यह मुनिम इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इतने पैसों में इसका गुजारा कैसे होता होगा। अतः सेठ ने सोचा कि अगर मुनिम की तनख्वाह बढ़ा दी जाए तो यह और मेहनत और लगन से काम करेगा। उसने अगले दिन से उस मुनिम की तनख्वाह बढ़ा दी। मुनिम को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वह हैरान रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं और चुपचाप पैसे रख लिए। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद मुनिम फिर एक दिन गैर हाजिर हो गया। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा, कैसा कृतघ्न आदमी है, मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई पर न तो इसने धन्यवाद तक दिया और न ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, यह नहीं सुधरेगा। और उसी दिन सेठ ने बढ़ी हुई तनख्वाह वापस पहले जितनी करने का फैसला कर लिया। अगली 1 तारीख को मुनिम को फिर से वही पुरानी तनख्वाह दी गई। लेकिन हैरानी यह कि इस बार भी मुनिम चुप रहा। उसने सेठ से जरा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ से रहा न गया और वह पूछ बैठा, बड़े अजीब आदमी हो भाई। जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद पहले तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा कर दी, तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और आज जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी पर तनख्वाह फिर से कम कर दी, तुम फिर भी खामोश रहे। इसकी क्या वजह है? मुनिम ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था। उस वक्त आपने जब मेरी तनख्वाह बढ़ा कर दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेजा है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। जिस दिन मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ उस दिन मेरी माताजी का निधन हो गया था। आपने उसके बाद मेरी तनख्वाह कम कर दी तो मैंने मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई। फिर मैं इस तनख्वाह की खातिर क्यों परेशान हूँ? यह सुनकर सेठ गदगद हो गया। उसने मुनिम को गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। उसके बाद उसने न सिर्फ मुनिम की तनख्वाह पहले जैसे कर दी बल्कि उसका और ज्यादा सम्मान करने लगा। याद रखें, हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती रहती है। जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर अनावश्यक उछलता नहीं और नकारात्मक घटनाओं पर अनावश्यक दख नहीं मानता और हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हुए सच्ची लगन और ईमानदारी से कार्य करता रहता है, वही आदमी जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। सम्यक समझ आने पर अपने आप ही समझ आ जाती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव को सम्यक ज्ञान के बल पर झेला जा सकता है। एक शिष्य ने गुरु से जिज्ञासा व्यक्त की कि संसार में हमें किस तरह रहना चाहिए। गुरु ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें कुछ समय के पश्चात दूंगा। 2 दिन के पश्चात एक भक्त बहुत बढ़िया मिठाइयां और फल लेकर स्वामी जी के पास आया और फलों की टोकरी और मिठाइयों के डिब्बे उन्होंने गुरुजी को समर्पित किए। गुरु ने मिठाई और फल लिए और भक्त की ओर पीठ कर वे सारे फल और मिठाई खा ली। जब भक्त चला गया तो गुरु ने शिष्य से पूछा, आगंतुक व्यक्ति मेरे संबंध में क्या कह रहा था? शिष्य ने कहा, गुरुजी, वह व्यक्ति आपसे बहुत ही रुष्ट हो गया था। वह कह रहा था कि फल और मिठाइयां तो खा गए किंतु मेरी ओर आंख उठाकर देखा भी नहीं और न मुझे आशीर्वाद ही दिया। गुरु ने शिष्य की ओर मुड़कर कहा, वत्स, संसार में रहने का यह ढंग अच्छा नहीं। हमें दूसरों का अपमान कर जीवित रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए जीवन का दूसरा ढंग हमें अपनाना चाहिए। दूसरे दिन एक दूसरा श्रेष्ठी बढ़िया मिठाइयां और फल लेकर आया। गुरुजी ने मिठाइयां और फल उस श्रेष्ठी से ले लिए और पास की गटर में उन्हें फेंक दिया और उस आगंतुक श्रेष्ठी को अपने पास बिठाया और बहुत ही प्यार से उससे वार्तालाप करने लगे। गुरुजी मधुर शब्दों में उस श्रेष्ठी से बातचीत कर रहे थे और श्रेष्ठी मन ही मन सोच रहा था कि ये कैसे महात्मा है, मेरे से एक तरफ तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, दूसरी ओर इन्होंने मेरे द्वारा लाई गई मिठाइयां और फल की टोकरियां इस प्रकार गटर में फेंक दी है मानो उनमें विष भरा हो। जब वह श्रेष्ठी चला गया तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि वह श्रेष्ठी मेरे से प्रसन्न होकर तो गया है ना, तुमसे कुछ कहा तो नहीं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, वह तो क्रुद्ध था। उसने जाते जाते मेरे से कहा, तुम्हारे गुरुजी कैसे पागल हैं जो मेरे द्वारा लाई गई बहुमूल्य वस्तुएं गटर में फेंक दी, यह मेरा कितना भयंकर अपमान हुआ। गुरु ने शिष्य से कहा, देख वत्स, संसार में जीने का यह तरीका भी ठीक नहीं है, लोग इस प्रकार के जीवन को पसंद नहीं करते। तीसरे दिन एक श्रेष्ठी मिठाई और फलों की टोकरी लेकर उपस्थित हुआ। उसने स्वामी जी को फल और मिठाइयां समर्पित की। स्वामी जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और थोड़ी थोड़ी मिठाई और फल सभी शिष्यों को दिए। आसपास में जो लोग बैठे थे उनको भी प्रसाद बांटा। स्वयं ने भी उसमें से कुछ ग्रहण किया। उस श्रेष्ठी से घंटों तक उपदेशप्रद बातें कही। जब श्रेष्ठी चला गया तब उन्होंने शिष्य से पूछा, यह सेठ हमारे संबंध में बता रहा था? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह सेठ आपसे बहुत ही प्रभावित हुआ और कह रहा था कि ऐसे संत ही विश्व के लिए श्रृंगार स्वरूप हैं। ऐसे संतों से मिलकर ही ज्ञान मिलता है और दिल प्रसन्न होता है। गुरु ने अपनी बात का उपसंहार करते हुए कहा, वत्स, संसार में रहने का यही एक तरीका है जो तुम्हें मिला है, उसे बांटकर खाओ, स्वयं प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो। जो इस प्रकार जीवन जीना जानता है उसका जीवन ही वास्तव में सच्चा और अच्छा जीवन है। यह एक ऐसी सक्सेस चाबी है जो व्यक्ति के जीवन में आनंद का संचार कर देती है। इसी तरह जिंदगी में एक सूत्र और पकड़ कर चलिएगा, है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, जो राजीव गांधी और ज्ञानी जेल सिंह के रूस जाने वाले जोक से समझा जा सकता है। सम्यक ज्ञान के बल पर देवियों की सुंदरता के झगड़े, लक्ष्मी और दरिद्रता के विवाद को भी जिनभद्र श्रावक ने सुलझा दिया। लक्ष्मी का सामने का फेस कटिंग और दरिद्रता का पीछे का फेस कटिंग बहुत ब्यूटीफुल है। सदा ध्यान रखो, कमाई गई संपत्ति तिजोरी में रखोगे तब भी यही रहेगी और दान दोगे तब भी यही रहेगी, लेकिन देने पर आगे साथ निभाएगी। तो फिर दान क्यों नहीं दिया जाए? समाज के कार्यों में राजनीति न हो, यहाँ धर्म और सरलता से काम लेना ही समझदारी है। रानी के हर्षातिरेक से कपड़े टाइट हो गए, रक्त संचार तेज हो गया। इससे फलित है कि आप किसी से प्रेम से बात करके भी उसे खुशियां दे सकते हैं। एक जाट ने बुद्धि से एक पढ़े लिखे आदमी को ट्रेन में चलते जीत लिया। वो उसकी बुद्धि का कमाल था। बुद्धि से ताकतवर आदमी को भी हराया जा सकता है। यही ऐसी की चाबी है जो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। धर्म प्रभावना। प्रवचन के प्रभावना के लाभार्थी सुश्री मानसी जैन सुपुत्री श्री नीरज जी जैन रामप्रस्थ दिल्ली की तरफ से की गई। और 5-5 सामायिक करने वालों की प्रभावना नररत्न श्री अजयेश जी जैन मंडी रोड जलंधर की तरफ से की गई। और कल 27 तारीख की प्रभावना संत रत्न गौतम मुनि जी महाराज साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में महिला रत्न श्रीमती सीमा जी अनिल जी जैन शक्ति नगर दिल्ली और महिला रत्न श्रीमती आशा जी किशोर जी मेहता मुंबई की तरफ से प्रभावना दी जाएगी। और 5-5 सामायिक करने वालों को प्रभावना श्री दिनेश कुमार जी जैन मंडी रोड वालों की तरफ से रहेगी। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो।